ایک سال ہو گیا ہے ہمیں
ایڈوانس ایک سال ہو گیا چودہ مہینہ ہو گیا
تو گیان کی باتوں کو لے کر کے تو نئے میں تو بہت ہوتی یہ بات ایسے نہیں وہ بات ویسے نہیں یہ بات ایسے ہے وہ بات ویسے ہے لوکک دنیا کی بھی باتیں ہیں لوکک گیان کی بھی باتیں ہیں لوکک دھرم سمپردائے کے انیک پرکار کے نیم نیتی رسم رواج کی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کے ٹکراؤ ہوتا ہے اور گیان میں تو ہر بات کا سمادھان ہے مانویہ دھرموں کے دوارا پھیلایا ہوا گیان ہے وہ تو پستکوں میں بندھا ہوا ہے کوئی بھی گرو ہوگا وہ پستکوں میں جتنا پڑھا ہوگا وہ ہی دوسروں کو سنا دے گا اس سے اوپر کچھ نہیں سنا دے گا اور یہ تو ایشوری گیان ہے ایشوری گیان کو پستکوں میں نہیں باندھا جا سکتا ایشور آ کر کے جو گیان سناتے ہیں وہ پستک کا پڑھ کر کے گیان سناتے ہیں یا ایشور کے اندر جو اپنا گیان ہے وہی سناتا ہے ایک ایشور ہی ہے جو پستکی گیان نہیں سناتا ہے نئی نئی باتیں سناتا ہے جو پستکوں میں کبھی سنی ہی نہیں تو جو نئی نئی باتیں سناتا ہے نت نیا گیان سناتا ہے نئی باتیں سنا کر کے نئی دنیا کی استھاپنا کر دیتا ہے تو ان نئی باتوں کو لوگوں کی بدھی میں بیٹھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے کیا ان باتوں کا ایکوریٹ جواب چاہیے اور جواب لینے کے لیے جواب دینے کے لیے پھر یہ وارتالاپ کا کلاس بھی رکھا گیا ہے بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم جواب دے تو دیتے ہیں لیکن اندر سے سنتوشت نہیں رہتے ہم نے صحیح جواب نہیں دیا
بابا یہ سنگم میں اگر اتنا بابا اگر اتنا پڑھائی پڑھا کر اتنا سب کو گیان دیتا ہے پھر کیوں اتنا پھر اندھے بن جاتا ہے بابا اتنا کرنا پڑتا ہے باہر کی دنیا سے پھر اسے سب پڑھتے جانتے تو ہے بات نہیں آتا
اس دنیا میں ستیوگ کے آدھ سے لے کر کے اور کلیوگ کے انت تک سچائی کا کچھ نہ کچھ انش تو رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے سچائی کا انش تو رہتا ہے لیکن جب ہم دیہ کے جنم لیتے ہیں تو دیہان میں آنے کے کارن سچی باتوں کو بھی ہم ٹھکراتے رہے ہیں کیا تو جتنا ہم نے سچی باتوں کو ٹھکرایا ہے دیہ ابھیمان میں آ کر کے سچائی کو ٹھکرایا ہے اتنا ہم کو یہاں سنگھرش کرنا پڑے گا کیا چاہے وہ پرجاپتا والی آتما ہو اور چاہے وہ چھوٹا موٹا راجا بننے والی آتما ہو اور چاہے وہ پرجاپت میں رہنے والی آتما ہو
آج بابا جتنا ہم گیان سنانے کے لیے جاتے ہیں وہ جو ہم کو ٹھکراتے ہیں
تو
جو حساب کتاب پورا ہوگا اس کے بعد پھر ہمارا نام
جب راجا بنے تھے تو راجاؤں نے منمانی نہیں کی تھی راجا منمانی کرتے تھے نا اپنی چلاتے تھے نا کوئی بھلے سچی بات بھی کہے تو اہنکار میں آ کر کے اپنی بات کو اوپر رکھنا اور ان کی بات کو نیچے گرا دینا اور ان کو دنڈ دے دینا ایسے کیا نا تو اب یہ حساب کتاب کب پورا ہوگا ابھی تو سچا باپ آیا ہوا ہے لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ آتما ابھیمانی بنو تو جتنا جتنا ہم آتما ابھیمانی بنتے جاتے ہیں جتنا جتنا ہم باپ کو یاد کرتے ہیں اتنا اتنا جلدی ریل گھومتی جب ریل 63 جنموں کی جلدی گھومے گی تو ہمارے سامنے جو کیے ہوئے پاپ کرم ہیں وہ جلدی جلدی سامنے آ رہے ہیں جلدی جلدی سامنے آ رہیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے تو گھبرانا نہیں چاہیے
ایسے کہتے ہیں کیا دھرم مارگ میں تم پہلے بھکتی میں رہتے بھی اتنا ہی چلاتے تھے کہ جلدی جلدی کرو صبح آ کر بھجن کرو یہ کرو پھر تم بولتے ابھی یہ بھجن وجن نہیں کرو ادھر آؤ تمہاری بات تو ہی کیوں مانی تو پہلے بھی تم ہی چلاتے تھے ابھی تم ہی چلاتے
پہلے ہم جو چلاتے تھے تو اس سمے ہم کو پڑھانے والا دیہداری گرو تھا کیا اور اب ہم کو جو پڑھانے والا ملا ہے وہ نراکار پرم برہم پرمیشور سوئم پڑھا رہا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دو
ایسا بولتے تم آج ادھر گیا تو آج یہاں کا اتنا اچھا گیا پھر تم ادھر چلے جائیں گے پھر تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گے کیا
جانا پڑے گا اگر ہمارے پاس وہ سچا باپ ملا ہوگا تو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا सचखंड में सब थोड़े जा रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं या सब जा रहे हैं?
थोड़े
जा रहे हैं। सचखंड के साथी थोड़े हैं और झूठ खंड के साथी दुनिया में बहुत है। झूठी दुनिया की आबादी बहुत होती है और सच्ची दुनिया की सचखंड की सत्य की आबादी थोड़ी होती है।
रावण के जो अर्जुन ने 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, बेहद का अर्थ क्या है बाबू?
महाभारत। जो महाभारत और जो भी शास्त्र लिखे हैं वो लिखे तो मनुष्यों ने, क्या 12 वर्ष का भी बहुत गहन है और 18 वर्ष का भी बहुत गहन है। जो 12 वर्ष उठाए हैं वो भी शूटिंग की यादगार है, जो 18 उठाया है शब्द वो भी शूटिंग की यादगार है, जो 8 उठाया है वो भी शूटिंग की बात है और 108 उठाया है वो भी शूटिंग की बात है। माने शूटिंग पीरियड में कोई 12 वर्ष का टाइम ऐसा है जिसमें वो उनको अज्ञात रहना पड़ता है, कोई जानता नहीं। तो शूटिंग का तो हमको ज्ञान मिल चुका है, मिला कि नहीं? सत्युग की शूटिंग, त्रेता युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग, तो उस शूटिंग में 12 वर्ष का पीरियड ऐसा कौन सा है जिसमें बहुत गुप्त रहना पड़ता है ब्राह्मण को?
गुप्ता तो नहीं रहे, गुप्ता नहीं रहे।
12 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष हुए, गुप्त क्यों नहीं गए?
12 वर्ष के बाद
प्रत्यक्ष हुए, 12 वर्ष तक तो गुप्त रहे।
12 ऐसा 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 बोला, 12 वर्ष जंगल में रहे और 1 वर्ष गुप्त में रहे बोला।
गुप्त में जो रहे तो 13 साल तक किसी ने पहचाना नहीं ना, उसके बाद ही तो पहचाना। तो ऐसे यहाँ भी 82 से लेकर के 98 तक का टाइम है, उसको क्या दुनिया वालों ने पहचाना? जानते ही नहीं। गुप्त में पाठ चलता रहा, गायन भी है, पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, लंबे समय तक उन्होंने कामपले नगर में वास किया, वो ही अंदर है। 98 के बाद फिर अखबारों में चकचक हो गई।
उसमें जो पांडव स्वर्ग में चले गए, 5 पांडव जाते समय में एक
स्वर्ग में चले गए, मतलब स्वस्थिति में चले गए,
वो पीछे मोड़ के नहीं देखना है, बोल के चले गए।
पीछे क्यों देखा? ड्रामा सो ड्रामा, बीता सो बीता, पीछे क्यों देखा? जो हुआ ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। अरे भगवान के बच्चे बने तो इतने दुखी क्यों होते हैं, इतनी ठोकरें क्यों खाते हैं?
एक कुत्ता भी चला हुआ दिखा था,
मैंने भी लिखा हुआ है, बिन बक व्याप ही सबई, बक माने शरीर, ये काम विकार जो है वो बिना शरीर के स्वर्ग में सबको व्याप्त होगा, वहां देह का अंग नहीं होगा काम विकार का, फिर भी कामना तो रहेगी। कामना होगी तो राधा कृष्ण के चित्र में, लक्ष्मीनारायण का जो चित्र है, लक्ष्मीनारायण के चित्र में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, कामना है ना, काम है लेकिन अंग नहीं है काम विकार। इसलिए बोला कि सत्युग में ऐसे नहीं है कि काम विकार होगा ही नहीं, होगा लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म इंद्रियों से काम करेगा। तो इसलिए बोला है कि कुत्ता भी स्वर्ग में आरोहण करता है लेकिन मरता कौन है पहले? 5 पांडव भी गए स्वर्गारोहण में, द्रौपदी भी गई और कुत्ता भी गया, पहले कौन मरा?
कुत्ता
पहले मरता है, माने इस्लामी पहले मरेंगे। जितने भी विधर्मी हैं उन विधर्मियों में सबसे पहले, विधर्मियों के बीच में सबसे पहले कौन आता है? इब्राहिम इस्लाम ही पहले आता है, इस्लाम धर्म ही पहले आता है विधर्मियों के बीच में, तो जो पहले आया है वो पहले उसको खत्म होना पड़ेगा। आज देखने में भी आ रहा है कि जो रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां हैं जिनके पास इतनी जबरदस्त एटमिक एनर्जी भरी पड़ी है, वो अपनी पावर के आधार पर मुसलमानी देशों को दबाते चले जा रहे हैं, एक एक करके आपको करते चले जा रहे हैं। तो बाहर की दृष्टि से भी मुसलमान पहले खलास होंगे, और अंदरूनी दृष्टि से अब जहां ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी जो इस्लामी है वो पहले बने। बाबा भी कहते हैं माया पहले सरेंडर हो, तो बिना माने सरेंडर हो जाएगी या मरना पड़ेगा, देह अभिमान से मरना पड़े, देह अभिमान से मरेगी तब ही बुद्धि से सरेंडर होगी। इसलिए इस्लामियों को सबसे ऊंचा पद मिल जाता है नरक की दुनिया। क्या मुसलमानों ने जितना दुनिया के ऊपर राज्य किया है दुनिया के ज्यादा हिस्से पर, उतना अंग्रेजों ने नहीं? अंग्रेजों का तो राज्य अभी 200 साल के अंदर हुआ।
बाबा पांडव घाट बोलता है, घाट का अर्थ क्या है? घाट का अर्थ क्या है? पांडव घाट बोलता है वो गुवाहाटी में, घाट का अर्थ क्या?
घाट का मतलब होता है जहाँ नदी बहती है और जहाँ स्नान करते हैं, उसको अलग अलग घाटों का नाम
जैसे बनारस। पांडवों ने बनाया क्या?
इस पांडवों की यादगार बनी हुई है कि वहाँ उसने घाट बनाया जाता है स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यादगार बनी हुई है। तो पांडवों ने यहाँ स्नान किया, कपड़े धोए, यादगार बना दी पांडव घाट। वाराणसी में तो ढेर के ढेर घाट है, स्नान करने की सीढ़ियां बनी हुई
है। निरंजन बोलता है, निरंजन कौन है?
निरंजन अलग, निरंजन है आप माने नहीं, लख माने देखना, अलग माने देखने में नहीं आता है वो। अलग निरंजन कैसा है? देखने में नहीं आता। और निरंजन, अंजन माना कालिमा, काला काजन। अंजन कहते हैं आंख में अंजन लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं अंजन। निरंजन, नि माने विशेष, जिसमें कालिमा है ही नहीं, वो अलग निरंजन माना जो कभी काला नहीं बनता, काली कर्म नहीं करता, वो है अलग निरंजन। तो वो कौन है अलग निरंजन? अलग निरंजन कौन है? कोई प्रकार शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो पति से पति तन में प्रवेश करते हुए भी वो अलग निरंजन है, काली कर्म नहीं करता।
काल भी बोलता है,
काल भी बोलता है, अलग भी बोलता है।
हाँ जी, हाँ
जी, बाबा जब विराट पुरुष के आप पड़ा बड़ा पुरुष, तो इधर की दशीस दिखाता है, इधर दशीस दिखाता है, वो क्या है?
माने सब कुछ है उसमें, देवताएं भी हैं, दैत्य भी हैं, मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं, दुनिया में जो कुछ है वो सब उसमें दिखाया गया। मैं सब कुछ हूं, विराट हूं।
आप दिखाता है, आप ही दिखाता है, मनुष्य दिखाता है,
सब कुछ है, कुछ बचा ही नहीं। दुनिया में जो भी पार्टधारी है वो सारे विराट रूप के अंदर दिखाई गए।
बाबा मम्मी ने पहला नेपाल, लंदन, फिर दिल्ली में जन्म लिया, ये कौन सी मम्मी?
मम्मी ने
क्या पहले जन्म लिया? नेपाल में, फिर लंदन।
ये नहीं बताया, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा ओम राधे ने, तो संदेशिया साक्षात्कार में गई, उस साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मम्मा अभी कहाँ काम कर रही है, तो उन्होंने बताया मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया, ओम राजे मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया। और जैसे ही ये बात संदेश में आई, ब्रह्मा कुमारी और खटाखट नेपाल में पहले काठमांडू सेंटर खोल दिया। लेकिन बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं, बेहद की बातें बताते हैं, ये नेपाल की बात ही नहीं है, ये नेपाल तो यादगार बना हुआ है। क्या नेपाल और नेपाली ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, भारतवासी भारत के ही है, इसलिए भारत में और नेपाल में पासपोर्ट नहीं बनता। क्या नहीं तो विदेश होता तो आने जाने में रोक लगाई जाती, पासपोर्ट बनाया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाली भी भारतवासी है लेकिन ऊंची स्टेज वाले हैं, ऊंची स्टेज वाले हैं, और उनमें जितनी पवित्रता की धारणा है उतनी और भारतवासियों में नहीं, क्योंकि नीची स्टेज है। कैलाश पर्वत के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? नेपाली तो कैलाश पर्वत के सबसे नजदीक, तो जितनी ऊंची स्टेज कैलाशी वासी की है उसी के नजदीक स्टेज नेपाली की होनी चाहिए। वो बेहद का नेपाली है, वो हद की बात नहीं है क्या। ये तो सिर्फ यादगार दिखाई गई है भक्ति मार्ग की। नेपाल का मतलब नई दुनिया की पालना करने वाले क्या ब्राह्मण। जब बनते हैं संगम युग में तो दो प्रकार के ब्राह्मण हुए, एक हुए बेसिक ब्राह्मण, बेसिकली पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी, नीचे स्तर की बेसिक पढ़ाई पढ़ी प्राइमरी स्कूल की, ऊंची स्टेज की पढ़ाई नहीं पढ़ी। जो ब्रह्म कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ाए रहे हैं वो पढ़े, और एक है उससे ऊंची पढ़ाई जिसे कहते हैं एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज जो है वो नेपाली ही पढ़ते हैं, माने जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं वो ही उस पढ़ाई को पढ़ते हैं। जिनको नई दुनिया की पालना नहीं करनी है, नई दुनिया के बच्चों को जन्म नहीं देना है, उनकी बुद्धि में वो पढ़ाई बढ़ती नहीं। नहीं तो कोई ब्रह्म कुमार कुमारियों से पूछो राधा कृष्ण का जन्म कैसे हुआ,
वो तो ऐसे बोलते हैं। एक दीदी से पूछा था कि ये राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, बोला मैंने तो ऐसा बोल रही थी, अरे भाई जैसा वो क्राइस्ट भी तो पवित्र कन्या के तन से ही जन्म हुआ था ना, ऐसे ही तो वो तो आ जाएगा,
ब्रह्म कुमारियों से पैदा हो जाएगा।
वैसे वैसे बोल बाबा, ऐसा तो नहीं बोलते, डायरेक्शन
माने जैसे ब्रह्म कुमार कुमारियों का कोई बाप नहीं होता। ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, हम ब्रह्म कुमार हैं, या ये कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार हैं।
प्रजापिता ब्रह्म कुमार
तो अपने ब्रह्म कुमार कहते हैं,
ब्रह्म कुमार कहते
हैं। माने हम अम्मा कुमार हैं, बाप का उनको ज्ञान नहीं। ऐसे जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा ना वो अम्मा से पैदा होगा, बाप का पता नहीं, ऐसे होता है नहीं है।
वो बार बार है ना क्राइस्ट जब है जो बाप जो क्राइस्ट है ना उसको मिलाते हैं
क्या है उसका, कन्या से पैदा हुआ माने उसका बाप नहीं था। ये हुई ब्रह्म कुमारियों की बात, लेकिन हमारा तो है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। कृष्ण जो बच्चा होगा वो देवता होगा या सन्यासी होगा, देवता धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है।
प्रवृत्ति मार्ग,
तो प्रवृत्ति मार्ग की पैदाइश भी प्रवृत्ति मार्ग वालों से होगी या निवृत्ति से होगी। अकेली मां से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा। जो षष्ठी का पहला पत्ता है, षष्ठी जो रची जाती है वो दो से ही रची जाती है, स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, तभी ही षष्ठी रची जाएगी। तो पहला पत्ता ये उन्होंने निवृत्ति मार्ग का बना दिया, ये कैसे हो सकता है।
थुथु थैया का अवस्था बाहर दुनिया से वैसे आने का बाद होगा ना, उसे आगे होगा
किसका,
बाहर दुनिया लौकिक से इधर दुनिया बोलने के लिए इन लोग ऐसा वैसा बोलने का टाइम, वेदांति देवी इधर आने उधर से जब
आएगी
लाने के बाद उसको आने का बाद होगा ना, किसे होगा,
क्या होगा।
जब बाबा ऐसे गीता पाठशाला वाले को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, थूथू थैया करेगी सब गांव वाले मीडिया वाले, तुमको ऐसा ग्लानी करेगा, तुमको ऐसा जाना पड़ेगा।
भगवान के बच्चे हैं, भगवान की ग्लानी होती है तो भगवान के बच्चों की भी दुनिया में ग्लानी होती है।
वो बोल रहे की कब होगा,
आने से पहले या फिर होगा।
ठीक है, दोनों काम एक साथ होते हैं। वैसे भी विष्णु का काम क्या है, विष्णु तो नौ विषय है ही नहीं, तो विष कहाँ से पिएगा। वैष्णव पंथ को तो बहुत पवित्र माना जाता है, जो वैष्णव होते हैं ना उनको तो बहुत पवित्र माना जाता है, वो विष पीने वाले है ही नहीं। तो विष्णु जब आएगा उस समय तो सदगति की फाउंडेशन पड़ेगा, माना स्वर्ग का गेट खुलेगा, और जो गति देने वाला है कौन, परमधाम की स्टेज बनाने वाला है शिव बाबा जिसे कहते हैं, गति देने वाला। हमारे मन को हमारी बुद्धि को गति कौन देता है इस समय, शिव बाबा तो एडवांस ज्ञान सुनाता है, एडवांस ज्ञान सुनने के बाद फिर हमारी मन बुद्धि की गति होती है। ऐसी गति होती है कि मन चिंतन मंथन हमारा चल पड़ता है, तो गतिशील हुआ, माना गति में हम जाते हैं, परम धाम में जाते हैं, शांति धाम में जाते हैं, उसका जो निमित्त बनता है उसको कहते हैं शांति देवा। वो है शांति देवा और वो विष्णु है सुखदेवा। तो दोनों गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे?
एक साथ खुलेंगे।
शांति धाम का भी गेट एक साथ खुलेगा, गति भी एक साथ और सदगति भी एक साथ, निमित्त दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। वो सुख देने की निमित्त बनेगी और वो शांति देने की निमित्त बनेगी। शांति सारी दुनिया को मिलेगी लेकिन सदगति सुख सारी दुनिया को नहीं मिलेगा, वो देवताओं को ही मिलेगा। तो विष्णु पहले आएगा, पहले आएगा नहीं, प्रत्यक्ष होगा। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तब शांति देवा भी प्रत्यक्ष होगा, एक साथ होगा।
बाबा बौद्ध धर्म धर्मों में ये क्या बोलता है, बुद्धि जब में इंकारनेशन होता है, बोल के अलावा लोग इंकारनेशन होते
हैं, आत्मा बुद्ध की आत्मा जब आती है।
लेकिन हिंदू में ऐसे नहीं दिखा,
हिंदू में तो देव आत्माएं आती है। वो जो देव आत्माएं आती है, इंकारनेशन का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो वो आत्माएं जो ऊपर से आती है, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, वो इंकारनेशन होता है। माना साकार में आती है और साकार में आकर के इस सृष्टि में घुल मिल जाती है। तो उनका इंकारनेशन है क्या?
ये बुद्धिस्ट में है।
बुद्धिस्ट में इंकारनेशन कहते हैं, इंकारनेशन हुआ, लेकिन वास्तव में क्या उनका इंकारनेशन हुआ?
नहीं हुआ।
वो हुआ ही नहीं,
हुआ नहीं, ऐसे ही बोलते हैं।
हाँ, ऐसे बोलते बोलते लोग इंकारनेशन हुआ। इंकारनेशन तो शिव का कहेंगे, वो आता है ऊपर से नीचे और नीचे आने के बावजूद भी वो सबको वो सदगति कर देता है, ऊपर ले जाता है। और धर्म पिताएं तो इंकारनेशन है ही नहीं वास्तव में। अगर उनका इंकारनेशन करें तो 500-700 करोड़
वो इंकारनेशन हुआ, बुद्ध का इंकारनेशन बोल के वो लोग गुंबज में जाके उनको फिर एक पद देता है।
उन्होंने गुंबज बनाया हुआ है, वो परम नाम की यादगार बनाया हुआ है। हिंदुओं में भी जो शिव का मंदिर बनाते हैं तो गुंबज बनाते हैं, वो परम नाम की यादगार बनाई हुई। वास्तव में वो गुंबज में बैठने से थोड़ी परम नामवासी हो जाते हैं, वो तो निराकार स्टेज बनाने की बात है।
तो ये है ना इंकारनेशन के टिबेट से, ये दलाई लामा, दलाई लामा उनको भी तो अवतारी बोल के ही है, सब पूजा करते हैं।
पूजा तो गुरुओं की करते ही हैं, गुरु लोग तो शिव हम कह के बैठते ही हैं। जो भी गुरु लोग हैं वो अपने को शिव कहते हैं, हम शिव हैं। शिव हैं तो इसका मतलब उनका हर कार्य, हर वाचा और हर वाइब्रेशन उनका कल्याणकारी होना चाहिए। फिर दुनिया कल्याणकारी बन रही है या अकल्याण होता जा रहा है? दुनिया अकल्याण होता जा रहा है, दुनिया तो नीचे गिरती चली जा रही। कितने हो चुके गुरु के ऊपर, गुरु कितने हो चुके? वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गुरु का चेला, चेला फिर गुरु बना, फिर उसका चेला हुआ, फिर गुरु बना। तो ये परंपरा चलती चली आ रही है, दुनिया नीचे गिरती चली आ रही है। उनको सदगुरु कहेंगे क्या? सदगति करने वाले हैं, सदगुरु निराकार तो एक है, एक सदगुरु निराकार है तो दुनिया नीचे क्यों गिरती चली जा रही है? फिर तो ये गुरु तो ढेर हो गए। इसका मतलब सब है झूठे और एक सदगुरु है सच्चा जो लास्ट में आता है, वो ही सारी सृष्टि की सदगति करता है, वो यूनिवर्सल बाप है। एक की सदगति नहीं करता, यूनिवर्स की, सारी विश्व की सदगति करता है, वे विश्व पिता है। ये धर्म पिताएं आते हैं, ये तो लिमिटेड
क्यों डिस्क्रिमिनेशन है ना, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है धर्म में? डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये बोलता है, वो बोलता है, ऐसा बोलता है, लेकिन एक ही समान में कोई नहीं दिखता है।
क्योंकि उनके धर्म पिताएं अलग अलग मान बैठे हैं, इनका बाप अलग, इनका बाप अलग, इनका बाप अलग, हमारा बाप अलग, क्या होगा? एकता आएगी एकता तो तब आएगी जब एक बाप को पहचान, सबने अपना अपना धर्म पिता अलग अलग बनाया हुआ है, अलग अलग धर्म पिता है, तो फिर आपस में लड़ाई होती है। अभी तो एक बाप आया हुआ है सारी सृष्टि को एक बनाने के लिए, इसीलिए कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बात करेंगे तो बात में से बात निकलेगी और झूठा पकड़ा जाएगा।
कोई नहीं
करना, मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करना, छूना भी नहीं, दृष्टि भी ना पड़ जाए। ये अलगाव करना सिखाया या एक होना सिखाया? तो अलगाव कर दिया
बाबा। ये बेंगलोर में एक साई बाबा है, ये कौन है? साई बाबा तो सारे बेंगलोर में।
साई बाबा एक थोड़ी, साई बाबा दो है।
सुना है
शिरडी बाबा, साई बाबा है शिरडी वाले, एक है फुट पट्टी, वो क्या नाम है, वो बड़े बड़े बालों वाले, वो है नए बड़े बड़े बालों वाले, और जो साई बाबा है वो पुराने हैं बंगलोर वाले। तो जो पुराने हैं वो फिर भी अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे, और ये जो बड़े बड़े बालों वाला है तो बहुत दिखावा करने वाला है। छह लोगों का सामने करता है, फैलाओ हाथ, हाथ फैलाओ, गोटी बंद करो, क्या चाहिए तुमको, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, वो उसमें आ जाती है। ये भूत प्रेत लीला हुई
बाबा। एक मुरली में लिखा है कि जब ये नारायण लक्ष्मी नारायण का रूप, तो ये सत्य साई बाबा ही लेंगे, ऐसे लिखा है हम लोगों ने सुना है।
लक्ष्मी नारायण का जन्म साई बाबा लेंगे, तो नरको नारायण बनाने वाला साई बाबा हो गया। माने साई बाबा कलयुग में आता है मध्य में, साई बाबा कलयुग के अंत में आएगा या कलयुग के मध्य में आएगा?
ये तो
झूठी बात हो गई। अरे भगवान आएगा तो पूरी दुनिया जब पतन के गर्त में चली जाएगी तब आएगा, ये बीच में आ जाएगा। कोई भी बाप जो मकान बनाता है बच्चों का, जब मकान टूट फूट जाता है, सुखदाई नहीं रहता, दुखदाई हो जाता है, तब ही बनाता है या उससे पहले रिपेयरिंग कराता रहता है?
टूटा फूटा हो
जाए, पूरा ही टूटा फूटा हो जाए, उसकी कोई गुंजाइश न रहे सुख देने की, तो उसको नया बनाता है। तो ये भी विश्व पिता है, ये भी सृष्टि पर तब प्रत्यक्ष होता है जब सारी दुनिया सब धर्म की आत्माएं दुखी हो जाए। कोई ये न कहे कि हम तन से मन से धन से सदा सुखी, तब वो सदा सुखी बनाने ही आता है। तो ऐसे थोड़े कि वो साईं बाबा वो आए आया राम गया राम, और उनके जाने के बाद भी दुनिया नीचे गिरती जा रही है। भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा, तो दुनिया सुखी हो जाएगी या दुख की तरफ जाएगी?
सुखी।
और तो हिंदुओं की तरह बात हो गई कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए, और द्वापर के अंत में आकर महाभारत युद्ध कराया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कलयुग की स्थापना कर दी। तो पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आता है, दुख की दुनिया बढ़ाने के लिए भगवान आता है।
और इतना झूठ कैसे हो गया ये?
वो झूठ, वो झूठ तो अब आपको पता चल रहा है ना, जब सच्चाया हुआ है। इससे पहले आप थोड़े ही समझते थे कि ये दुनिया इतनी झूठ हो गई। जब सच्चा निकलता है तो झूठ का पता चलता है।
अभी इतना झूठ लगता है, इतना कृष्णा बोलता है, सोलह कला संपूर्ण अभी बोलता है, द्वापर के अंत में आकर लड़ाई कराया, इनसे लड़ाई कराया, आज तो एक चोरी करेगा उसको जेल में पकड़ के रख देगा, उसको तो फिर जेल जगह कर दिया।
अभी बातों का जवाब नहीं आता, दुगुरु लोग कहते हैं बात ही नहीं करना, बात करोगे तो
गीता का ज्ञान सुना है। राम और रावण के दोनों के बीच में तो मतभेद थे, शत्रु शत्रु थे, लेकिन शिव का पूजा तो रावण को ही कराया, राम ने क्यों?
रावण ने शिव की पूजा की, शिव है निराकार क्या, और रावण ने देवियों की पूजा की, देवता की पूजा नहीं की, समझा? तो रावण यही काम करता है, एक तो देवियों के पीछे लगता है, देवता को उड़ा देता है, तुम हटो भागो हमारा काम बनेगा, एक तो निवृत्ति मार्ग बनाने वाला है, और दूसरी बात वो निराकार को मानने वाला है, कोई साकार को मानने वाला नहीं है। तो ये जितने भी विधर्मी हैं, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, सारे ही और उनके फॉलोअर्स सब निराकार को मानने वाले, कोई साकार को मानने वाला नहीं। निराकार को मानते हैं इसलिए जब दुनिया का विनाश होगा तो ये भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
हमारे ये सनातन ये हिंदू धर्म में एक है, कैसा है कि आइडल वर्शिप करना है, कि फादर तो गया है स्वर्ग हेवन चला गया है, लेकिन उसका श्राद्ध करना पड़ता है वर्ष वर्ष में, पीजा लड़ाना पड़ता है, ये क्या है ना?
ये यादगार है,
यादगार ही है,
यादगार संगम की यादगार है। संगम युग में जो ज्ञान में से मर जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, जिंदा होते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, माना जन्म लिए फिर मर जाते हैं, माना अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो जो मर जाते हैं उनकी यादगार है। यहां देखो संगम युग में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझती हैं, ऊंची स्टेज में गए या नीचे गए? ऊंची स्टेज में गए, जो जो मरते जा रहे हैं कहीं स्वर्ग पदार्थ वो ऐसे समझते हैं, और हम क्या समझते हैं सही अर्थ कि यहां जो जीते जी मरेगा वो स्वर्ग का अनुभव करेगा, जो जीते जी देहभान को त्यागेगा, देहभान से मर जाएगा, वो क्या अनुभव करेगा? यहां स्वर्ग का अनुभव करेगा, इस शरीर में रहते रहते ही स्वर्ग का अनुभव, भले दुनिया में खून खराबा होता रहे लेकिन उसको दुख नहीं भाग सकता। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। दुनिया में कयामत हो रही है, हाहाकार हो रही, खून खराबा हो रहा है, दुनिया मर रही है, और खुदा के बंदे कैसे मौज में रहेंगे? तो उन्होंने अपनी खुदी को त्यागा, देवान को त्याग दिया, तो जो मरते हैं वो स्वर्ग पधार जाते हैं, स्वर्ग पधार जाते हैं तो फिर उनके पीछे उनका दीवा जलाते हैं।
ऐसा तो बोलते हैं जो क्रिश्चियन लोग होता है, क्रिश्चियन लोग क्या करता है, वो दफनाता है, क्या बोलता है कि जब एक दिन सोने के टाइम आएगा वो आकर कवर
मिट्टी में से निकालेगा,
मिट्टी में से निकालकर हमको स्वर्ग में
ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का जब अंत होता है तो सारी दुनिया मिट्टी में गढ़ जाती है, माने देह अभिमान की मिट्टी में सब दब जाते है, सारी दुनिया देह अभिमान की मिट्टी में दबी हुई है। खुदा आया हुआ कहाँ से निकाल रहा है? खोद खोद के दे अभिमान की मिट्टी में से निकाल रहा है। आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनेंगे तो स्वर्ग में जा रहे तो बात तो सारी यहाँ की संगम की, जो समझे सो जाने, समझना ही नहीं चाहते तो जानेंगे कैसे?
जम्मू कश्मीर में वैष्णव जी एक गुफा के अंदर में है, वो बहुत जीवित है, कलयुग की कलंकी भवन के लिए प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं।
देवी तो प्रत्यक्ष करेगी, काली देवी थोड़ी प्रत्यक्ष करेगी, काली देवी तो और संघार कर देगी असर उस दुनिया का।
गुफा के अंदर में बुलाए,
हाँ जो गुप्त है, अभी किसी को पता है वैष्णो देवी कहाँ है? वैष्णो देवी है तो आप जब कोई कहते हैं कि ये है वहाँ है, वो वहाँ जाकर के बात करो तो कुछ पता ही नहीं चलता, अंदर की बात है। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। गुफा माना गुप्त, गुप्त जैसे अमरनाथ मंदिर में क्या है, शिवलिंग को गुफा में दिखाया गया, गुफा का मतलब गुप्त है, वो गुप्त पार्टधारी है। लिंग लिंग जो है वो दस इंद्रियों में से एक लिंग भी तो दिखाया जाता है, भगवान की जो यादगार है वो लिंग रूप में क्यों दिखाई गई? आंख के रूप में दिखाते, देवताओं को नेत्र कमल कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं, देवताओं की हरेक इंद्रिय पूजी जाती है, लेकिन शिव की, शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म करके दिखाया है संसार में विष पीने का, वो विष पीने का कर्म और इस तरह का कोई कर ही नहीं सकता कि संग के रंग में आए और निर्विष बना रहे और दूसरों को भी निर्विष बनाए। तो वो जो गुफा में लिंग दिखाया गया है बर्फ का, वो बर्फ का लिंग कोई लिंग ठंडा नहीं होता है, बर्फ नहीं होता है, बर्फ की तरह ठंडा नहीं होता, लिंग तो गर्म होता है, गर्म खून होता है उसमें, मार मारने वाला होता है, लेकिन दिखाया है ये योग बल का प्रताप दिखाया है जो मुरलियम बाबा बोलते हैं कि योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कितनी शीतल हो जाएंगी? जैसे अमरनाथ की गुफा में वो शिवलिंग शीतल दिखाया गया है, ऐसे अनुभव कराने वाली इंद्रियां हो जाएंगी। तो यादगार दिखाई गई वो गुफा बना गुप्त, वो गुप्त बात है। पांडव गुप्त होकर के गुप्त हो, लोगों को पता ही नहीं चाहिए पांडव। कांपल्य नगर विशेष दिखाया गया है पांडवों के लिए, तो कांपल्य नगर यादगार बना हुआ है ना। कहते हैं द्रौपदी कुंड से द्रौपदी पैदा हुई, अब स्वाहा स्वाहा करने वाले यज्ञ कुंड से कोई कन्या पैदा होती है? ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है, उस ज्ञान यज्ञ कुंड से उसकी रचना हुई, सबने जाना कि हाँ ये द्रौपदी का पार्ट है, ये ध्रुव पार्ट है। द्रौपदी इसका पार्ट ध्रुव है, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
आगू हफ्ता का घर जाने का टाइम 500 करोड़ का दुनिया जब होगा उस टाइम में आगे होगा,
500 करोड़ का
500 करोड़ का ही दुनिया जब होगा तब उस टाइम में होगा ना बच्चा।
आबू अब्बा का घर है का मतलब सारी दुनिया का आबू अब्बा है कि किसी दो चार का है? सारी दुनिया का है। बुद्धि से तब जाने का टाइम आएगा जब सारी दुनिया में उसकी प्रत्यक्षता हो जाए आबू अब्बा की। जब सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सब समझेंगे, सब मानेंगे, जानेंगे कि वो आबू अब्बा आया हुआ।
कितना होगा? 5 करोड़ होगा ना, उसे ज्यादा
जो भी 500-700 करोड़ है सबको मानना पड़ेगा आया हुआ है। सबकी बुद्धि वहीं रखी पहुंचेगी, कहां माउंट आबू पहुंचेगी, भले तन से न जा पाए लेकिन मन बुद्धि में सबका विश्वास वहां बैठेगा।
कौन से जाने का टाइम
है? जब प्रत्यक्षता होगी
बाबा। ये जो जाने के टाइम होता है ना, राधा कृष्ण का जन्म होने से पहले वहां पहुंचेगा या बाद में पहुंचेंगे?
आप कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं?
जो अभी सत्युग
में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे, सत्युग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनका शास्त्रों में गायन है, पूजन है, मान्यता है, हिस्ट्री है। या संगम युग में जो राधा कृष्ण होंगे जिनके साथ कंसी जरा सिद्धि दिखाई जाते हैं उनका गायन पूजन है,
संगम युग का।
तो आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? हाँ 18 में पैदा होने वाला, लेकिन कौन सा कृष्ण 18 में पैदा हुआ? दैहिक कृष्ण या जिसका शास्त्रों में गायन है वो आत्मिक रूप में प्रत्यक्ष होने वाला कृष्ण?
सत्युग में नारायण बनने वाला।
तो सत्युग में जो नारायण बने वो सत्युग में पैदा होगा या संगम में पैदा होगा?
पैदा होने के टाइम में बाबा कृष्ण और कंस के साथ हो नहीं सकता लिखा है उस टाइम में,
कृष्ण के साथ कंस हो नहीं सकता। शास्त्रों में जो यादगार लिखी है वो कहाँ की यादगार है?
एक ही ऐसा ऐसा
नहीं, शास्त्रों में जो यादगार है कृष्ण के साथ कंस वो कहाँ की यादगार
है?
और राम के साथ रावण वो कहाँ की यादगार? त्रेतायुग
की,
संगम की यादगार। तो बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो कहाँ का ज्ञान है?
संगम
युग का ज्ञान है। संगम युग में ही राधा कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे, इसलिए मुरली में कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। माने चाहे नारायण कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे प्रजापिता कहो, एक ही पर्सनालिटी का नाम है। तो कृष्ण का जन्म होगा का मतलब स्थूल जन्म की बात नहीं है। कौन से जन्म की बात है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा पैदा होता है पहले गुप्त होता है, गर्भ में है पता ही नहीं बच्चा है कि बच्ची है, जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही जो कृष्ण है संगम युगी कृष्ण है वो संसार में प्रत्यक्ष होगा। उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बाप अपने को खुद प्रत्यक्ष करता है कि बच्चों के द्वारा अपनी प्रत्यक्षता करता है? तो बच्चे में फर्स्ट क्लास बच्चा कौन है?
फर्स्ट क्लास बच्चा तो
कृष्ण है, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बाप का प्रत्यक्ष होना माना निराकार और साकार दोनों का प्रत्यक्ष होना। निराकार बाप से प्रत्यक्ष होगा और सृष्टि का जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, वो भी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन होगा बच्चे के द्वारा।
बाप कब होगा?
18-19 तो पहले से ही बताया हुआ है।
अच्छा, उसे पहले अबू के घर जाना, माम डॉक्टर जाना है कि उसके बाद होगा हमारा जाना?
हाँ, ये जाने वाली बात है, वो सबकी अपनी अपनी संपन्नता की बात है, सब एक जैसे नहीं होंगे।
एक साथ सब नहीं जाएगा?
नहीं, एक साथ सब कैसे जा रहे हैं? सब एक जैसी स्टेज में एक साथ पहुंच जाएंगे क्या? सब एक साथ अभूल बन जाएंगे क्या? आज बोले क्या बोला? अब वो एक साथ बनेंगे या नंबरवार बनेंगे?
नंबरवार
बनेंगे। देवान को भूलेंगे तो अबूल बनेंगे, तो एक साथ बन जाएंगे सब अबूल।
और फिर स्थूल में जो कृष्ण का जन्म होगा वो क्या होगा? अभी तक तो मंत्राय थे, मतलब जो 1918 में जो जन्म, तो मतलब हाद में भी जो कृष्ण बच्चा जो राधा कृष्ण है वो हाद में भी जन्म लेगा 18 में, ये भी समझे थे। तो फिर अभी प्रत्यक्षता हो गया, मतलब हाद में वो कृष्ण बच्चा का जन्म कब होगा? वो 36 में जब
आप इंतजार पहले किसका कर रहे हैं? देहधारी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं जो देह का जन्म लेगा, या उस कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं प्रत्यक्षता का जो आत्मिक रूप से प्रत्यक्ष होगा संसार
में?
आप किसका इंतजार कर रहे
हैं?
है या नहीं है? ये नहीं, आपका इंतजार, आपका इंतजार की ललक किसके लिए लगी हुई?
बाप के ऊपर है।
बाप का जो बाप है वो तो बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो बच्चा सत्यु का कृष्ण तो है नहीं। सत्यु का कृष्ण नरसिंह नारायण बनता ही नहीं, बनता है? तो बाप का बच्चा असली कौन सा हुआ? जो नर्स है वो है संगमिल। एक शिव बाप है जिसकी आत्मा का नाम है शिव, बाकी जितने भी नाम है वो सब देहधारियों के नाम है, देह के नाम है।
कोई जो लक्ष्मी
तो संगमिल कृष्ण, कोई देह होगा जिसका नाम संगमिल कृष्ण है।
जो नर्स है नारायण बनेंगे ना बाबा, उसी को ही कृष्ण भी कहेंगे ना,
वही संगमिल कृष्ण होगा।
बड़ा भी जो एनएस जो बना है ना, नया दुनिया का सौगात भवन ने बताया,
मैं
जो एनएस जो अभी है ना नया दुनिया का
सौगात,
तो सुखधाम का फाउंडेशन वही अभी शुरू हुआ है क्या?
सुखधाम कहो या शांति धाम कहो,
सुखधाम शांति इकट्ठा होगा क्या?
सुखधाम कहो या शांति धाम कहो, दोनों का बीज एक होगा या अलग अलग होंगे?
अलग अलग
बीज है,
तीन नाम बताया ना, तीन धाम का बीज अलग अलग बेटा।
एक दुखधाम, एक सुखधाम और एक है शांति धाम। तो शांति धाम का बीज कौन है? शिव, जिसे कहते हैं शंकर, शांति देवा मानो कोई देवता है। और एक है सुखधाम, क्या सुख का फाउंडेशन डालने वाला, तो विष्णु हो गया। और एक है जो दुखधाम की तरफ दिखाया गया त्रिमूर्ति में, तीन मूर्तियां हैं, एक को दिखाया गया शांति धाम की तरफ वो शांति देवा, एक को दिखाया गया दुखधाम की तरफ ब्रह्मा, वो दुख क्रिएट करता है। क्यों दुख कैसे क्रिएट करता है? मरते दम तक दुख क्रिएट किया, दुख ही लेकर के गया, दुख में मरेंगे तो दुखी हो जाते हैं, नया जन्म मिलता है वो सूक्ष्म शरीर से मिलता है, भटकते रहते हैं, तो दुख की दुनिया क्रिएट की। और जो बीच में है वो बैलेंस में, न दुखधाम की तरफ आकर्षण ज्यादा न सुखधाम की तरफ आकर्षण ज्यादा, बैलेंस में है।
बाबा ये जो ब्रह्म कुमारी लोग है ना, ये शंख को भी क्यों सूक्ष्म शरीर धारण धारण करते हैं? सुषमा वो भी सुषमा लोक में बैठा है, सुषमा धारी है वो ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म कुमारी
विष्णु नहीं बोलते,
विष्णु को नहीं बोलते,
विष्णु सूक्ष्म से जा रही है ऐसे नहीं बोलते,
नहीं बोलते शिव को
बोलते
ऐसा तो वहाँ बोला मैंने तुषा ये त्रिमूर्ति में हारा
कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म शरीरधारी देवता है
बोले
नहीं सिर्फ ब्रह्मा ही शक्ति पे आता है
ऐसे बोलती है नहीं तो विष्णु तो आकर बाद में पता चला कि वो तो सुषमा का हुआ है वैसे सुषमा से काम करेगा शंकर को बोलती है वो शंकर तो सुषमा से ही काम करेगा बोलती है तो सूक्ष्म बोला है फिर तो त्रिदेव बोला है तो देव क्यों बोला है बोलने से
अगर सूक्ष्म में ही कोई काम करता है साकार सृष्टि पे काम नहीं करता है तो यादगार चित्र कहाँ से आ गए तुमने तो किताबों में लिखा हुआ है चित्र उसी के बनते हैं जिसने कोई चरित्र किया हो तो शंकर के चित्र दुनिया में सबसे जास्ती है सबसे कम है सबसे जास्ती चित्र तो शंकर और तीर्थंकर के ही इससे क्या साबित हुआ कभी पाठधारी बना है या नहीं बना
है
जरूर पाठधारी बना तो तुम्हारी बातें दो बोली है कभी एक बात बोलते कभी दूसरी बात बोलते द्वैतवादी है द्वैतवाद से दैत्यों का जन्म होता है दो दो बातें जो सुनाते हैं सुनते हैं उनसे होते हैं दैत्य और एक ही बात जो करता है एक ही बात सुनता है एक ही बात सुनाता है उससे बनते हैं देवता अद्वैत हमारा धर्म ही अद्वैत धर्म एक धर्म एक राज्य एक मत एक कुल तीनों मूर्तियों के साथ कार्य करता है ऐसे नहीं कहा ये कहा मैं जब आता हूँ तो तीन मूर्ति के साथ आता हूँ
सेवेंटी सिक्स में
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया है माने तीनों मूर्तियाँ बाप नहीं है तीनों मूर्तियों में एक मूर्ति है जो संसार के सामने बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है
संपूर्ण
प्रत्यक्षता तब होती है जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएं जैसे आदि में सुअंत में आदि में मर्ज रूप में था किसी की बुद्धि में नहीं था ये ब्रह्मा है ये विष्णु है ये शंकर है लेकिन तीनों मूर्तियां मौजूद थी उस समय जब साक्षात्कार का रहस्य सुनाया बीज डाला ज्ञान का उस समय भी तीनों मूर्तियां मौजूद थी और अंत में भी जब सारे संसार में प्रत्यक्षता होगी तो शंकर वाली मूर्ति भी होगी और जो ब्रह्मा की मूर्ति है जो आदि में थी वो भी मौजूद होगी जिसने साक्षात्कार सुनाए और साक्षात्कारों को सुना क्या वो भी मौजूद होगी और वो भी मौजूद होगी जिसने साक्षात्कारों को अंदर से समझ लिया और अंत में फिर साक्षात्कारों के रहस्य को समझाएगी दुनिया वालों को वो जब तक नहीं आएगी तब तक शंकर और शंकर के फॉलोअर समझाए नहीं सकेंगे क्योंकि खुद ही निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रहे हैं क्या शंकर के अलावा और जो भी फॉलोअर्स हैं शैव समाजी कहे जाते हैं वो रुद्रमाला में जो भी हैं वो सदैव निश्चय बुद्धि रहते हैं कभी अनिश्चय में भी आते हैं एक क्षण के लिए अनिश्चय आता है या नहीं आता है
आता है
आता है इसका मतलब बीच बीच में मरते भी रहते हैं तो खुद समझे नहीं है और दूसरों को भी नहीं समझा सकते वो कब समझाएंगे जब वो तीसरी मूर्ति निकले तीसरी मूर्ति आगे कदम बढ़ाएगी आज में भी उसने समझा था और अंत में भी समझती है और दूसरों को समझाती है ये है विश्व पिता
रुद्राक्ष में बहुत शक्ति है बता रही
है एक मुखी
रुद्राक्ष
एक मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष की जो माला बनती है उस माला में जो मणके होते हैं उनमें कोई के एक मुख कोई के दो कोई के चार कोई के पांच कोई के आठ कोई के दस ऐसे अलग अलग मुख दिखाए गए गोल मणका होता है ना उसमें ऐसे ऐसे मुख दिखाए गए ऐसे तो वो जो मुख है रुद्राक्ष की माला में वो मुख लेने की यादगार है क्या वो यादगार मुख इस बात की यादगार है मुख लिया है उन्होंने माने को किसी ने बारह आत्माओं ने किसी का मुख लिया बारह मुख से बारह तरह की बातें करता है कोई ने एक मुख ही लिया, पूरे मणके में एक मुख दिखाते, माने एक ही मुख से बात करता है, एक ही बात करेगा। दूसरी बात नहीं करे, उसको कहते हैं जिसमें शिव बाबा प्रवेश किया, माने जिसमें बाप दादा के अलावा और कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, वो हुआ एक मुखी मणका। जिसमें बाप दादा भी प्रवेश कर जाए, फिर कभी कभी भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाए, दो तरह की बातें करने लगे। जैसे शंकर का एक बच्चा दिखाया जाता है षणमुख, कार्तिकेय छह मुख वाला, तो उसे कितनी आत्माओं ने प्रवेश किया, छह धर्म पिताओं ने प्रवेश किया। क्या शिव ने तो प्रवेश किया, लेकिन छह धर्म पिताओं ने भी प्रवेश किया, तो उसको षणमुख दिखाया जाता, छह मुख वाला।
बाबा ये भूत प्रेत को भी आदमी मानता है क्यों?
क्यों होते नहीं है क्या? तो ब्रह्मा को नहीं मानते तुम? तुम कब से ज्ञान में चल रहे? छह महीने से, उससे पहले बेसिक में नहीं थे?
बेसिक में थे,
बेसिक में थे ना, तो उसमें ब्रह्मा को नहीं मानते थे?
मानते थे,
ब्रह्मा की आत्मा को मानते थे, गुलजार दादी में आती मानते थे ना,
मानते थे।
तो फिर तो दूसरों की बात क्यों करते हैं? आप खुद अपनी बात करते
बाबा ऐसा बोला ना मुरली, पहले आंख ही बच जाएंगे, आंख ही पहले बच जाएंगे,
आठ ऐसे बचेंगे जो धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे, और बाकी सब धर्मराज की सजा से अवज्ञाकारी है, बेवफा है। क्या अवज्ञाकारी है, बेवफा है, बेईमान है, ईमान पक्का नहीं है, फरमान बरदार नहीं है। आज फरमान मानते हैं और कल मना कर देते हैं, हम नहीं मानेंगे। भगवान की एक बात मानते हैं, दूसरी बात नहीं मानते हैं। कौन हुए थे
मणिपुर का
देहत का अर्थ क्या है? मणिपुर, मणिपुर, अरे मणि किसको कहा जाता है? धन संपत्ति है, मणि मन, मणि मणि मणि। हमारे पास जो मणि होता है बैंक में जमा करने जाते हैं कि नहीं, तो मणि मने मणि, बेहद में मणि। एक होता है मणि, एक होता है मणि, एक है मणि। जिसके पास मन की बहुत शक्ति हो वो मन वाला है, माने मणि है। एक है मणि, आत्मा रूपी मणि जिसकी सदैव विराजमान है, जिसे अश्वत्थामा को कहते हैं, मस्तक में क्या था? मणि विराजमान।
बाबा ये जितना भी शहर और देश का नाम होता नहीं, ये सब बिहार में ही होता है क्या बाबा?
जरूर होगा।
या भाई जैसा
दिल्ली नाम है,
दिल्ली है,
दिल्ली है तो दिल लेने वाली है ना, ये केकी क्या दिल वाला भी है कोई? एक एक ही दिल लेने वाला है।
ये जैसा हमारा इंडियन कैंपस है,
जो भी है
सिक्किम बोलते हैं,
जो भी है वो है जड़, और वो है चैतन्य, वो है शुक्र तारा जड़, मंगल तारा जड़, और वो है चैतन्य। नवग्रह माने जाते हैं ना, तो जैसे वो जड़ है और ये धरती के सितारे हैं, चैतन्य। तो जो भी जड़ यादगार है उसका चैतन्य भी कोई पार्ट बजाने वाला है।
ये सब काम के आधार पर बने,
काम के आधार पर नाम पड़े।
बाबा भगवान ज्ञान के तीन भाग्य, अग्नि ज्ञान, ब्रह्मास्त्र और एक ही उदाहरण में भूल गया,
भूल गया
क्योंकि वो क्या है बाबा?
बाण माने ज्ञान के बाण, बाण ऐसा है कि आग की तरह काम करता है, जैसे आग सबको जलाए देती है, ऐसे ज्ञान का बाणा ऐसा छोड़ता है जो सबका रावण का दिल जल जाता है, रावण ही जल जाता है।
गणेश के शिव में हाथी का सूर दिखा जाता है उसका रस।
देह अभिमान की सूर ज्यादा है, मुंह में भरा हुआ है देह अभिमान, क्या और इंद्रियों में देह अभिमान इतना नहीं भरा हुआ जितना मुख में देवान भरा हुआ। देवान भरा हुआ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञान सुनने वाला हूँ, मैंने बहुत ज्ञान सुनाया है, मैं बहुत सेवाधारी हूँ, तो बड़े बड़े काम दिखाई। आंख में मत भरा हुआ क्या, बस संदरी में बैठ जाएंगे। बाबा की याद आए या ना आए, लेकिन देह अभिमान की दृष्टि लेना और देना, इसलिए उसकी मधुमा की आंखें दिखाई जाती है। लंबा चौड़ा डीप डाउन वाला शरीर दिखाया जाता है, क्या मतलब हुआ, देवान बहुत बड़ा रहता है, बड़ा मत चौड़ा मस्तक दिखाया जाता है, माना बुद्धि में बहुत तीखा है। जल्दी सुबह क्या कहेंगे, महावीर कहेंगे कि महारथी कहेंगे, हाथी जैसा पुरुषार्थ था या घोड़े जैसा था या प्यादा था, हाथी की तरह पुरुषार्थ।
बाबा कौरव को सूर्य पुत्र भी कहता है, सारथी पुत्र भी कहता है।
किसको,
कौरव,
कौरव हाँ। सूर्य पुत्र इसलिए कहते हैं कि सूर्य के वरदान से पैदा हुआ था, ज्ञान सूर्य से पैदा हुआ था, ज्ञान सूर्य है जिसमें कार्य करता है, वो बच्चों को जन्म नहीं देता है। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तेरा किसके लिए कहा, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तेरा ये शब्द किसके लिए यूज किया, जो सारी सृष्टि का बीज है उसमें सब कुछ भरा हुआ है, क्या उसमें महादेह अभिमान भी भरा हुआ है, देह अभिमान में आकर के जब ज्ञान सुनाया होगा तो कर्म का जन्म हो गया।
महाभारत के बारे में अर्जुन का गांडीव धनुष बोला था, धनुष
है
वो गांडीव धनुष कौन है,
धनुष धनुष कहा जाता है ये शरीर, इसे पुरुषार्थ किया जाता है, ये शरीर इतना लचीला होना चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में कहीं जरूरत पड़ जाए तो लचीला बन जाए। कोई कोई का शरीर ऐसा होता है कि इनकार कर देता है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, लचीला होना चाहिए, जितना ज्यादा धनुष लचीला होगा उतना तीखा बाण मारेगा। कहते हैं दधीचि की हड्डियों का धनुष, क्या दधीचि कहा जाता है ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने जैसा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया ऐसे हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाला धनुष, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ जो ब्रह्मा ने किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दे, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाए, उसको कहते हैं राम। राम ने क्या किया, दधीचि की हड्डियों से बने हुए धनुष को भी तोड़ दिया।
कृष्ण के मुख में मुरली दिखाते, राम के उसमें बाण दिखाते,
कृष्ण ने चैन की बंसी बजाई जिंदगी में, क्या किया कृष्ण ने, क्या किया, कोई युद्ध किया क्या, उन्होंने महाभारत में भी नाम दे दिया रणछोड़, क्या उन्होंने युद्ध रण किया ही नहीं, युद्ध किया ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा ने चैन की बंसी बजाते हुए पुरुषार्थ पूरा कर लिया। भले हमें विश्व का बादशाही न मिले, सत्युग में आराम से 150 साल तक राज्य तो करेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किसने किया, हा? अरे 5000 वर्ष की दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किसने किया, कृष्ण की सोल ने किया, प्रजापिता ने नहीं किया, वो तो संगम युग में करेगा,
के बाद नहीं
कर पाएंगे, चलो जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक राजाई उसके हाथ में रहेगी, बाद में ना तो बच्चे हाथ में आ जाएगी नहीं जाएगी, तो लंबे समय तक राज्य किसका हुआ, तो चैन की वंशी यहाँ भी बजाएगी और वहां भी बजाएगा, इसलिए उसको वंशी दिखाते हैं मीठी तान, इसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो, क्या कोई को दुख ना दो, ऐसा बोलना बोलो जो कोई को दुख हो जाए, कोई होते हैं तीखी बात बोल देते हैं भले किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा, भले सच्ची बात बोली, लेकिन सच्ची बात भी ऐसी ना होनी चाहिए जो कोई का दिल दुखा दे। तो ऐसा पुरुषार्थ किसने किया? चैन की वंशी बजाई, उनको वंशी दिखाई जाती, मीठा मीठी तान सुनाई, मीठा ज्ञान सुनाया, कभी किसी को कड़वा नहीं बोला। रामबाली आत्मा
टेढ़ा
बोलता है वो संगम की कैसे की बात
महाभारत के युद्ध में अशस्त्र वर्णन कृष्ण ने किया, अब तुम अमर रहो, ये क्यों इसका भी वर्णन किया? और तुम्हें
आत्मा रूपी मणि को जो धारण करेगा वो अमर रहेगा, कोई एक अशस्त्र की बात थोड़ी ही।
तैतीस कोटि देवता बैठे, कोटि का मतलब है?
कोटि माने करोड़,
कोटि
तैतीस करोड़ माने तैतीस करोड़, तैतीस कोटि माने करोड़। जैसे कहते हैं हजार, सौ, सैकड़ा, उससे ऊंचा हजार, उससे ऊंचा लाख, उससे ऊंचा उससे सौ गुना करोड़।
ये भक्ति मार्ग में तैतीस तैतीस कोटि देवाती बिराई गुरु बिना भूले सकले आचार्य बोलते हैं।
क्या होता है? वो गुरु को मानने वाले हैं, साकार देवताओं को, साकारी देवता ही आत्मा है, वो गुरु साकार गुरु को मानते हैं, वो सिर्फ निराकार को मानने वाली नहीं है। अभी भी वो आत्माएं आती जा रही है, देवात्माएं वो साकार में गुरु को मानने वाली है। तैतीस करोड़ देवात्माएं
बाबा वो शंकर तीर्थता में अर्धचंद्रमा दिखाता है, कोई चित्र में दाया में दिखाता है, कोई अर्ध में बाया में।
क्या
शंकर के चित्र में अर्धचंद्रमा दिखाता है दत्ता में, कोई चित्र में था दाया में, कोई चित्र में था बाया में, क्या है?
तो राइटियस और लेफ्टिस्ट दोनों तरह के पार्ट में जाता है, राइटियस पार्ट में जाता है, लेफ्टिस्ट भी पार्ट में जाता है।
कृष्ण को गिरिधर कहते हैं ना,
कृष्ण को
गिरिधर पर्वत उठाया था ना उन्होंने,
तो गिरिधर
संगम युग में क्या मतलब?
संगम युग में है कि उन्होंने पहाड़ उठाया तो 16,000 गोपियां उसके नीचे रक्षा ले ली, छत्र छाया में आ गई, तो वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है गिरिधर। कैसा पहाड़? जिसकी छत्र छाया में 16,000 गोपियां शरण ले लेते हैं। किस पे उठाया? एक उंगली पर, छोटी सी उंगली पर, कनिष्ठिका। माना रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें सबसे छोटा मणका, क्या ऐसा छोटा मणका जो कम पावर वाला है, लास्ट मणका है, माना सबसे छोटा है वो कौन है? सबसे छोटा मणका कौन है? सबसे ज्यादा मजबूत मणका कौन है? 108 मणके हैं, उनमें पहला मणका सबसे ज्यादा पावरफुल और लास्ट वाला मणका सबसे कमजोर। जो लास्ट मणा मणका है उसके ऊपर पहाड़ उठा दिया। कौन है वो? जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा सबसे पावरफुल है और जगत पिता सबसे पावरफुल और जगदम्बा नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि वो मणका भी भगवान भी बहुत नजदीक है। माला में जो मणके हैं उनमें सबसे नजदीक दो मणके कौन है? जगत पिता और जगदम्बा, और बहुत नजदीक है। इसलिए नजदीक होने के कारण, ये विशेषता होने के कारण वो डूलेगा हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। इस छोटी सी उंगली के ऊपर 16,000 को उठा दिया। माने ऐसा भी टाइम आने वाला है कि 16,000 जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर्ड होकर के पार्ट बजाएंगे वो सब उसकी रहबरी में पार्ट बजाएंगे, पालना लेंगे जगदम्बा की रहबरी। इसलिए गिरिधर कहा जाता है। 16,000 जो गोप गोपियां हैं वो उसके संरक्षण में पलती है। उसको नाम क्या है पहाड़ का?
गोवर्धन
पहाड़। वर्धन माने बढ़ाना। किसको बढ़ाया? गाँव को बढ़ाया, कितने गाँव में बढ़ा के करती, 16,000 गाँव में बढ़ा बढ़ा के सरेंडर करा करा के 16,000 कर दी। ये बेसिक का गाय ना कि एडवांस का गाय, बेसिक का क्यों नहीं, वहां तो 450 हो गए बस, ब्रह्मा बाबा के रहते रहते कितनी सरेंडर हुई, 450 बस वो गाय थोड़ी है, वो उस गायन पार्ट का गायन है जिसके रहते रहते 16,000 सरेंडर हो जाए। लेकिन उनको पालना देने वाली कोई माता चाहिए कि नहीं चाहिए, वो है जगदम्बा, इसलिए उसका नाम है गौवर्धन पहाड़, गौओं की वृद्धि करने वाला पहाड़। चलो टाइम ज्यादा हो जाएगा।